नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात और ना ही यहाँ रुकना है, इसीलिए तो मुझे जाने दीजिए या मैं उन्हें फोन करके बुला लूंगी। उसके बाद वो आपके साथ जो करेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आरवी ने अब उन्हें शान की धमकी दी थी और ये बात सच भी थी। अगर शान को इन सबके बारे में पता चलता तो अमरजीत जी को उसके रौद्र रूप का सामना करना पड़ता और कहीं ना कहीं आरवी भी उसके गुस्से की शिकार बनती। आरवी की बातें अमर जी के सीने पर तीर की तरह चुभ रही थी और छलनी करती जा रही थी उनके दिल को। उन्हें भी परसों रात जो हुआ वो सब याद आ गया था। कितने बेबस थे वो उस वक्त कि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी पर अश्लील कमेंट्स किए जा रहे थे, उसकी इज्जत का तमाशा बन रहा था और वो कुछ नहीं कर पाए थे अपनी बेटी के लिए। कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि शान ने उनसे दुश्मनी निकालने के लिए ही ये सब किया था आरवी के साथ, जिसका उन्हें भी बहुत दुख रहा। शर्मिंदगी से उनका सर झुक गया आरवी के सामने और उन्होंने बेबसी से कहा, हम जानते हैं कि आपको उस जिल्लत का सामना हमारे वजह से करना पड़ा और हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। इस बात का दुख हमसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम आपके गुनहगार हैं, पर हमने कभी ऐसा नहीं चाहा था। हम जानते हैं कि आज हालात हमारे खिलाफ हैं, सबकी तरह आपको भी हम गलत लग रहे होंगे, और सच कहें तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पर बेटा, हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमने आपकी माँ को धोखा नहीं दिया है। हम तो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो अचानक ही एक रात हमें छोड़कर क्यों और कहाँ चली गई हमें इसका ज़रा भी इल्म नहीं था। हमने आपको और उन्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, पर न वो मिली और ना ही आपका कुछ पता चला। हम तो ये भी नहीं जानते कि शान क्यों हमसे नफरत करते हैं। वो हम पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं जिसे करने की हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हम खुद परेशान हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम खुद सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास कीजिए हमारा बेटा, ना तो हमने आपकी माँ को धोखा दिया है और ना ही शान ने जो कहा वो हम कभी कर सकते हैं। अमरजीत जी उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगे, पर आरवी ने नफ़रत और बेरुखी से अपना चेहरा फेर लिया। अमरजीत जी का चेहरा दर्द से सन गया। कुछ पल खामोशी से वो आरवी को देखते रहे, फिर अपनी भावनाओं को संयमित करते हुए बोले, जानते थे हम कि आप हमारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगी। जब हमारा बेटा, जिसे हमने पाला, जो हमेशा हमारे साथ रहा, वो ही हमारी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सका, तो आप हमें जानती ही कितना है जो हम पर विश्वास करेंगी। कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास अपनी सच्चाई साबित करने का। हालात हमारे खिलाफ हैं तो आप हमारा साथ क्यों देंगी? आपको हम गुनहगार लगते हैं तो ठीक है, तो कीजिए हमारी बातों पर विश्वास। अब हम आपको कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे शान बहुत अच्छा इंसान है एंड आई एम श्योर कि इतने सालों में वो बहुत अच्छा पति भी साबित हुए होंगे, लेकिन इस वक्त उन पर हमारे लिए उनकी नफरत हावी हो रखी है और क्योंकि आप हमारी बेटी हैं इसीलिए वो हमें झुकाने के लिए, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए आपको दर्द देंगे, और हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए जब तक हम सारा सच सामने नहीं ले आते आपको यहीं रहना होगा हमारे साथ अपने घर में। जैसे ही सब ठीक होगा हम खुद आपको शान के पास छोड़ आएंगे, पर अभी हम आपको उनके साथ नहीं रहने दे सकते, इसलिए आप उन्हें कह दीजिए कि अब से आप ठाकुर निवास में रहेंगी। अमरजीत जी ने बड़ी ही सहजता से अपनी बात कह दी। वहीं उनकी बात सुनकर आरवी के होश उड़ गए। उसने हैरानी भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा, क्या मतलब है इसका कि आप मुझे वहां नहीं जाने देंगे? अमर जी ने उसको पैनिक करते देखा तो आराम से समझाते हुए बोले, देखिए बेटा, आप भले हमें अपना पिता ना माने, पर हम इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आप हमारी बेटी हैं। इस वक्त शान अपनी नफरत में इतने डूब गया है कि उन्हें सही और गलत में फर्क नहीं समझ आ रहा। अगर वो हमें चोट पहुंचाते तो हम खामोशी से सह जाते, पर वो हमें तकलीफ देने के लिए आपको मोहरा बना रहे हैं, आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए जब तक हम सारी सच्चाई सामने लाकर शान के मन से नफरत को खत्म नहीं कर देते आप यहीं रहेंगी। चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो आप शान को कह दीजिए कि अब से आप यहाँ रहेंगी, या फिर हम खुद उन्हें कह देते हैं कि अब से हमारी बेटी हमारे साथ रहेंगी। आरवी के भाव एकदम से बदल गए। उसने गुस्से से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना ही यहाँ रहूंगी। ये मेरा घर नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी जहाँ मेरा परिवार है और जहाँ मेरे पति रहते हैं। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। आरवी की बात सुनकर उन्होंने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा आप समझ नहीं रही हैं, अभी आपका शान के साथ रहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं मेरा उनके साथ रहना, और आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आज मेरे साथ जो भी हो रहा है और वो मेरे साथ जो भी कर रहे हैं सब आपके की गुनाहों की तो सजा है जिसे आपकी बेटी भुगत रही है, और आपकी सजा ये है कि ये जानते हुए कि आपकी बेटी आपकी वजह से दर्द में है और जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे यहाँ रखकर अपने गुनाहों की सजा से बचना चाहते हैं ना, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको सजा जरूर मिलेगी, मैं वापस जरूर जाऊंगी। अमरजीत जी ने आरवी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर आरवी अपनी जिद पर अड़ी रही, तो आखिर में उन्होंने मजबूरन उसके साथ सख्ती दिखाते हुए कहा,
हमने एक बार कह दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। और ये तो आप कुछ देर पहले ही देख चुकी हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए अपनी जिद छोड़िए और हमारी बात मान लीजिए।
नहीं, मैं नहीं मानती आपकी किसी बात को। आपके यहाँ रहकर मैं ये बिल्कुल नहीं साबित होने दूंगी कि मैं भी आपकी ही तरह धोखेबाज हूँ। मैं वापस जरूर जाऊंगी।
आरवी ने भी अपना फैसला सुना दिया और जैसे ही जाने के लिए पलटकर कुछ कदम आगे बढ़ी, दरवाजे पर वही जाट जाकर खड़े हो गए। आरवी के कदम रुक गए। उसने पलटकर अमरजीत जी को देखा और गुस्से से बोली, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं तो मैं अभी ही मिस्टर मल्होत्रा को फोन करके सब बता देती हूँ।
आरवी ने जैसे ही अपना फोन निकाला, किसी ने उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया। आरवी ने हैरानी से सर घुमा कर देखा तो एक गार्ड उसके पास खड़ा था जिसने उससे उसका फोन ले लिया था।
आरवी गुस्से से उस पर बरसते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, मेरा फोन वापस करो।
गार्ड ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया और दो कदम पीछे हट गया।
आरवी फोन लेने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसके कानों में अमरजीत जी की आवाज पड़ी, कोशिश बेकार है आपकी, अब आप यहाँ से नहीं जा सकती और आपका फोन भी अब हमारे पास रहेगा। रही बात शान को बताने की, तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि अब से हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी।
आरवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो उनकी तरफ घूमते हुए, गर्जी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे नहीं रहना यहाँ आपके साथ।
दूसरी तरफ से अमरजीत जी ने एकदम शांत लहजे में कहा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, बस कुछ दिन आपको यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं और जो कर रहे हैं आपकी ही भलाई के लिए कर रहे हैं, तो अब अपनी जिद छोड़िए और यहाँ रहने के लिए मान जाइए। अगर आप हमारी बात मान जाती हैं तो आपको आपका फोन वापस मिल जाएगा, और नहीं मानेंगी तब भी आपको यहीं रहना होगा। हम अभी शान को कह देते हैं कि अब से आप यहीं रहेंगे अपने डैड के साथ।
शान किसी मीटिंग में था तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। हालांकि रिंग नहीं बजी क्योंकि फोन साइलेंट पर था, पर उसके वाइब्रेट होने की वजह से शान को कॉल आने का पता चल गया था, लेकिन उसने कॉल इग्नोर कर दी। फोन कट गया और अगले ही पल फिर फोन वाइब्रेट होने लगा। आखिर में खींचते हुए शान ने अपने फोन को निकाल कर देखा तो फोन पर झलकते नाम को देखते ही उसके भाव एकदम से गंभीर हो गए। टू बी कंटिन्यूड।